उनका दर्शन ही किया, भोजन मंगा तो नहीं किया। और ये सब समय अपवित्र रहने वाली वेद भी नहीं पढ़ती है, वेद भी अधिकार नहीं, और इन्होंने भगवान को दर्शन किया, खिलाया पिलाया और संतुष्ट कर दिया, बस उनके चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे, मुझे अधिकार है जी हम लोग। इस तरह से यज्ञ पत्नियों को कृपा की। कुछ लड़कियां कात्यायनी व्रत कर रही थी गोपियों, एक दिन नंगी होकर के स्नान कर रही थी अंतिम दिन, आए सखाओं के साथ में कुछ और उनके वस्त्र लेकर के ऊपर चढ़ गए और चिठोली तरने लगे, ओ तुम नंगी होकर के आकर के हमें प्रणाम करेगी तब। उन्होंने कहा कि हम एक हंस से जाकर कहेंगे नंद बाबा यशोदा से नालिश करेंगे, किंतु कृष्ण हंसने लगे, हंस हमारा क्या कर लेगा। कृष्ण की इच्छा अनुसार जल से निकल करके उनको प्रणाम किया और कृष्ण ने कहा अगले कार्तिक महीने में पर्व पूर्णिमा में तुम्हारी इच्छाओं को हम पूर्ण करेंगे। वे खुश होकर के अपने अपने घरों में और अगले वर्ष जब कार्तिक आरंभ होता है तो उस समय में पहले दिन पूर्णिमा होती है, उस दिन कृष्ण ने बंसी बजाई और जो गोपियां जहां थी वहीं से घर के सब के काम काजों को छोड़कर कृष्ण के तरफ में दौड़ पड़ी, एक दूसरे से बतलाया नहीं। और वे कोई घर लिप रही थी छोड़ दिया, कोई रोटी पका रही थी बस अर्थ जले छोड़ दिया तवे पर ही, कोई घर में तालिया बस डालिया बना रही थी उसको उसी स्थिति में छोड़ दिया, कोई पति की सेवा कर रही थी उनके लिए गर्म जल बना करके स्नान करने के लिए दी वो भी छोड़ दिया, कोई अपनी ननद की या दूसरों की लड़के को दूध पिला रही थी वो भी छोड़ दिया, सब कुछ जन लगा रही थी, एक अंक में अंजन लगाया दूसरे में नया उसी को छोड़ दिया, कोई गहने पहन रही थी तो पैर का पायजेब गले में और हार को पैर में पहन दिया चल पड़ी जैसे। उनमें से किसी किसी पतियों ने उनको रोका, उन्होंने त्याग किया, वो सबसे पहले कृष्ण के पास में कैसे पहुंच गई, और गोपियां जो सिद्धा गुप्ती थी वो पहले पहुंच गई और पीछे से ये लोग भी पहुंची। कृष्ण समझाया अपने घरों में लौट जाओ, पतियों की सेवा करना परम धर्म है, पति लंगड़ा लूला कोढ़ी निर्धन गरीब जैसा भी हो स्त्रियों को अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए, तुमको धर्म उल्लंघन का पाप लगेगा इसलिए लौट जाओ। गोपियों ने कहा वाह कितनी अच्छी शिक्षा देने वाले आप जैसे गुरु कहां मिलेंगे, तो ठीक है आपकी बात तो मानते हैं घरों में लौट जाएंगे किंतु पहले गुरु की सेवा तो कर ले, किसी काम में गुरु का ही अर्चन पहले होता है पूजा। हम पहले आपकी सेवा कर ले इसके बाद में हम घर जाएंगे, और दूसरी बात हम जाएंगे कहां, घर को तो छोड़ा ही है पति को छोड़ा ही है, आज धर्म का उल्लंघन कर चुकी है, अब कहीं संसार में हमारा स्थान नहीं है। इस प्रकार से यदि दोष है हमारे आने का और धर्म उल्लंघन का आप ही इसके कारण है। कृष्ण निरुत्तर हो गए, अंत में उनके साथ निराश हुए, इसका बहुत लंबा वर्णन है। कृष्ण राधिका जी मानकर करके चली गई, कृष्ण भी रास में सब गोपियों को छोड़ करके चले गए, यार रास लिया काम पर कृष्ण की विजय है, जैसे इंद्र को दर्प चूर्ण किया जमदी को जाकर के दर्शन दिया, उन्होंने उनकी वंदना की। शंकर और ब्रह्मा जी को तो जानते ही हैं, इसलिए कामदेव ने सबको परास्त कर दिया, किंतु कृष्ण ने काम को पराजय करने के लिए दिया है। और दूसरी बात, राधा की सर्वश्रेष्ठता दिखलाने के लिए है। सब जितनी गोपियां हैं उन गोपियों में राधा जी यदि नहीं रही तो रास किस लिए, इसलिए सब गोपियों को छोड़ करके रास के स्थान से चले। इसके बाद में गोपियां हाय हाय करने लगी, कृष्ण राधा जी को लेकर गए, उनको भी छोड़ दिया। फिर सब आकर के यमुना के पुलिन में कीर्तन करने लगी, रो रही है कि कीर्तन कर रही है, कुछ मालूम नहीं। इसके बाद में कृष्ण प्रसन्न होकर के दर्शन दिए, गोपियां उनसे ताना मारने लगी, हम आपके लिए सब कुछ छोड़ करके आए और आप हमें छोड़ करके चले गए। कृष्ण ने कहा, न पारे हम निर्भर, तुम्हारा प्रेम हमारे प्रति निर्मल है, मैं देता हूँ जैसी लंबी आयु पाकर के भी तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। कदापि यदि तुम अपने सत स्वभाव से साधु स्वभाव से हमें मुक्त भी कर दो, किंतु मैं तो तुम्हारा चीर ऋण ही रहूंगा। इस प्रकार से रासलीला समाप्त हुई। नारद जी कृष्ण से मिले, बोले जी महाराज आप तो ब्रज की लीलाओं में ही मग्न हो गए, आपको पता है आपके माता पिता को हथकड़ी में बंद करके और कितना कष्ट कंस देता है, अत्याचार कर रहा है, उनको पैरों से ठुकराता है, अपमान करता है। अब तो वहां पर भी तो जाना है, उनको छुड़ाना है, और इसके बाद में आपको जरासंध इत्यादि दानवों को मारना है, फिर द्वारका में जाना है, 16,108 रानियों से शादी करनी है, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह द्रोण कर्ण अशस्त कामा इत्यादि सब आतकाई लोग हैं, धर्म अधर्म कर रहे हैं, उनको भी मारना होगा, आप भूल गए। ओ ठीक है, और इधर में नारद जी यहाँ से कर करके कंस के पास में गए, अरे देखो ये सब विष्णु हैं, विष्णु के दल वाले हैं, तुम्हारे मारने की तैयारी हो रही है, तुम पर दया मत करो, और वो घोर अत्याचार और करने लगा। नारद जी ने इसलिए कहा कि जितना ही जल्दी अत्याचार करेगा भगवान जल्दी आए। इस तरह से कंस दिन रात उन्हीं की चिंता करता था। अक्रूर को बुला करके कहा, अक्रूर ताऊ जी आप हमें बड़े शुभ चिंतक हैं, आप जल्दी ब्रज में जाइए और वहां से कृष्ण को और बलदेव को किसी प्रकार से समझा बुझा करके लाइए, यहाँ पर अंगेश्वर के लिए पूजा होगी शंकर की, और उस पूजा में संदल होगा, उसमें बड़े बड़े पहलवान आएंगे, वो अपनी अपनी कला दिखलाएंगे, उसमें कृष्ण भी आए, उनके पिता माता को भी निमंत्रण करना, वो भी हमारा कर दे करके जाए। अक्रूर ने कहा, ये भगवान की इच्छा है, जब मृत्यु निकट आती है तो कोई व्यक्ति नाग को सर्प को अपने गले में लगा लेता है, ये नहीं जानता है कि घसेगा। कंस ने देखा कि हम जितने असुरों को भेजा ब्रज में, कोई लौट करके संवाद नहीं देने के लिए आए, ये क्या हुआ, पुतना को भेजा होगा, सुर को बकासुर को अरिष्टासुर को और किसने कुछ को भेजा, कोई भी लौट करके नहीं आया, इसलिए ब्रज में उसको मारना कठिन है, इसलिए अपने किले में ले आए और यहाँ पर चारों मुस्त इत्यादि बड़े बड़े वीर हैं, हम लोग हैं, सभी लोग मिल करके उसे मारेंगे। अक्रूर चाचा जी आप जल्दी से जाइए। अक्रूर ने अच्छा, तुम सर्प को अपने आप गले में लगा रहे हो, बुला रहे हो। अक्रूर जी ने कहा, सोचा जी ये भगवान का इसी विशेष दर्शन हो जाएगा, अपने को धन्यवाद मनाते हुए नंदगांव में गए और वहां पर कृष्ण और बलराम से कहा, फिर नंद बाबा जसोदा से कहा और फिर समस्त ब्रजवासियों के जितने नंद बाबा उनके सखा थे उनको सबको निमंत्रण किया, वे लोग भी अप्रभु के साथ में आए और कृष्ण बलदेव को ले आए। उसमें गोपियां पागल हो गई कृष्ण के, रोने लगी, विलाप करने लगी। कृष्ण ने किसी प्रकार से समझाया, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर आऊंगा कंस को मार करके। इसलिए गोपियों ने किसी प्रकार से धैर्य धारण, जिसके बाद में कृष्ण आए और धनुष यज्ञ हो रहा था शंकर जी के निकट। वहां पर कंस ने मतवाला हाथी रखा था, क्या ना कुबल्या थी, और कृष्ण ने प्रवेश करके और कुबल्या पीठ मत पी करके और कृष्ण को मारने के लिए झपटा। कृष्ण ने बलदेव ने पूंछ सूढ़ पकड़ करके उसे इधर उधर कसने गिरा करके उसके दांत उखाड़ के उसी से मारा, महावत को भी मारा, रक्षकों को भी मारा, और दी की तरफ ने उस दांतों को अपने कंठों पर लेकर के खून के छींटे लगे हुए आगे बढ़े। धनुष को उठाया, उसे तोड़ दिया पहले दिन, और फिर रंगशाला में प्रवेश किया। रंगशाला माने जहाँ पर अखाड़ा होता है, वहां पर चारुण मुस्टिक सब सोशल इत्यादि बड़े बड़े पहलवान जिनका वज्र के समान शरीर था, कृष्ण को और बलदेव को हाथ पकड़ करके खेच लिया अखाड़े में। तुम तो बड़े वीर हो, उतना को घासुर बकासुर को मरने वाले साधारण नहीं हो, इसलिए आज हम दंगल करके महाराज कंस को रिझाएंगे, प्रसन्न करेंगे। कृष्ण ने कहा हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं, छोटे छोटे बच्चे नहीं है, तुम लोग जंगल में खेल कूद में बड़े बड़े कसरत करके व्यायाम करते हो, तुमने यदि पीर नहीं होता तुम लोगों को कैसे मारा। अभी अभी कुबल्या पीर हाथी को भी मार डाला सुना, और जबरदस्ती पकड़ करके खेच। कृष्ण फिर राष्ट्र आस्वादन करने लगे, और बलदेव जी जब लड़ते लड़ते जब चारुण ने कृष्ण को एक मुक्का मारा, मारने के उद्देश्य से ज्ञान से मारने की, कृष्ण ने उसे सह लिया और इसके बाद में उसको उठाकर पकड़ लिया और आकाश में घुमाते हुए उसे फेंक दिया, वो मर गया। बलदेव जी ने इसी प्रकार उसकी को तल सोशल सब दिनों को मारा। इसके बाद में कंस के भाई लोग आए, उनको भी मारा, और कृष्ण सिंह की तरफ में उछल करके ऊपर में कंस बैठा था, बस उसकी चोटी पकड़ करके और गिरा दिया। लड़ने का समय भी नहीं दे, और उसकी छाती पर ब्रह्मांड का भार लेकर के कूद पड़े, वो बड़ी पर समाप्त हो। अब तो कंस की स्त्रियां आकर के रोने लगी और सब लोग लो रहे हैं, हाय हाय क्या हो गया। कृष्ण ने उनका संस्कार कराया, फिर किस प्रकार से नंद बाबा नंद बाबा से कृष्ण मिले। नंद बाबा रो रहे थे, उनको साहस देकर के सांत्वना देकर के बलदेव और कृष्ण को कुछ दिन के लिए छोड़ करके ब्रज में लौटे, और इनको गुरु गृह में संदीपनी मुनि के यहाँ बहुत गौर कृष्ण और बलदेव को भेज दिया। वहाँ उनका मुंडन हुआ, वहाँ पर जाकर के गुरुकुल में कितने दिन 64 दिन रहे, और 64 दिन में 64 कलाएं सब वेद उपनिषद शास्त्र पुराण सब परांगत हुए, धनुर्वेद और जितने प्रकार के मंत्र तंत्र सब में ये नित्य कला में संगीत कला में निपुण हो गए 64 दिन में। और गुरु को अपने पुत्र, गुरु का पुत्र मर गया था, उसको गुरुवाइन ने कहा कि हमारे पुत्र को ला दो। कृष्ण जम से पुरी से जाकर के उनके पुत्रों को लेकर के दे दिया। इस प्रकार से कृष्ण लौट करके और फिर गुरुकुल से फिर मथुरा में आए। उस समय एक दिन अटारी पर चढ़ करके उत्तर की तरफ में वृंदावन की तरफ रहे, और उनको ब्रज की याद आई। कैसी याद आई, अब कृष्ण महाराज जी इसका विवरण आप लोगों को सुनाए। अब ये लीला अब तक तो ब्रज की थी, अब इसको माथुर लीला कहते हैं। कृष्ण मथुरा चले गए, वहां से क्या क्या लीलाएं की हैं इसका वर्णन करें। बोलो इसके बाद माथुर लीला थी। गुरुवी गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। अभी अभी गुरु जी ने ब्रज लीला का वर्णन हम सभी को सुनाया है। भगवान ने ब्रज की लीलाएं की, प्रेम रस का आस्वादन किया, साथ ही गोपियों के विरह विप्रलंभ में कितना भाव उदय होता है, उस भाव चमत्कारिता का आस्वादन उसको जगत में प्रकाशित करना, जिसे देखकर लोग चमत्कृत हो जाए और शरीर उनका अनुगत्य स्वीकार करे, उन भावों को प्राप्ति करे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो कि ब्रज लीला के पश्चात मथुरा में गए और मथुरा में जा करके जो कि आपने श्रवण किया है, जब गुरु शांतिपनि के वहां से लौट के आए, एक दिन छत के ऊपर चढ़ते हुए देखा कि सामने यमुना बहती हुई जा रही है। यमुना की खलखल धारा को देखते हुए कृष्ण के मन में ब्रज की सारी स्मृति उमड़ आई। उस समय वे अपने को धैर्य नहीं रख सके, बड़े विरह में व्याकुल होकर रोते रहे। ऐसे समय में उनके परम मित्र जो कि वृषनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा बुद्धे व्यस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम, वह उद्धव जी जो कृष्ण के परम मित्र हैं मथुरा में और बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, वृष्टि वंशियों के प्रवर श्रेष्ठ हैं और जदुवंशियों के मंत्री हैं। इस प्रकार उद्धव जी जिनको देख करके सभी आनंदित हों, देखने में कृष्ण जैसे परंतु कृष्ण नहीं, ऐसे उद्धव को उन्होंने अपना सखा बनाया और वे उद्धव जी कृष्ण के साथ हमेशा रहा करते। जब आकर के देखा कि कृष्ण बड़े व्याकुल होकर रो रहे हैं, देख के वे भी आश्चर्यचकित हो गए कि क्या बात है। उस समय कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ करके कहा कि प्यारे उद्धव भैया, गच्छो भव ब्रजम सोम के त्रिनाम प्रतिमा बह, हे सोम हे उद्धव, तुम ब्रज में एक बार चले जाओ, मेरे पिता माता को वहां सांत्वना देनी है और मेरी प्राण वल्लवा मदात्मिका ब्रज गोपिया जो मेरे बीच में केवल प्राण धारण करके रह रही, मैं आऊंगा आयास से इति दोष सके, मैं आऊंगा वचन दे करके आया, इसी वचन पर विश्वास प्राण धारयन्ती कथं चन, कैसे भी किसी भी प्रकार से बड़े कष्ट से प्राण धारण करनी, नहीं तो वे सब कभी शरीर छोड़कर चली जाए। ऐसी जो गोपियां हैं मेरे बीच में खोई हुई, मैं समझता हूं उन लोगों ने अन्न जल सभी को त्याग दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया, इसलिए मत संदेश सही विमोच, मेरे को संदेश वचनों के द्वारा उनको धैर्य बना रहे और वहां पर तुम जाओ। कृष्ण ने उद्धव को क्यों भेजा? कृष्ण गोपियों के विरह में, ब्रजवासियों के विरह में व्याकुल हैं, विरह में अधीर हैं, उनका हृदय भरता है पर मुंह नहीं फटता, मुंह नहीं खुलता। क्यों? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके सामने उन ब्रजवासियों के दुख दर्द की बात सुनाए, किसी को भी कुछ नहीं कह सकते। मथुरा भूमि जो है ऐश्वर्य की भूमि है। यद्यपि ब्रज की राजधानी ब्रजमंडल में मथुरा है, फिर भी मथुरा ऐश्वर्य की भूमि होने से सभी ऐश्वर्य भाव में डूबे थे। ब्रजभूमि माधुर्य की भूमि है। उस माधुर्य की भूमि और ऐश्वर्य भूमि में बहुत अंतर हो जाता है। भावनाओं का भी दिन रात का अंतर है। कृष्ण किसी भी प्रकार से किसी के सामने कोई बात नहीं कर पाए। ये उद्धव जी यदि ब्रज में जाए और वहां जाकर के गोपियों की पाठशाला में कुछ प्रेम का पाठ सीख करके आए, तब इसके सामने कुछ कहो तो वह समझेगा। इसलिए कृष्ण ने उसे सिखाने को ब्रज में भेजा। यथार्थ कोई ज्ञान का संदेश देकर के गोपियों को धैर्य बनाना उद्धव के द्वारा संभव नहीं था। फिर भी उद्धव के मन में तो ऐसा विचार था कि ब्रज की गोपियां, ब्रजवासी जितने भी हैं सब गांव के हैं और ये घोष घोष लोग हैं, जादव हैं, अतः इनको समझाने में क्या लगता है। दो चार बातों में अपने ज्ञान की परिपाटी में उनको समझा दूंगा, भुला दूंगा, वे कृष्ण को भूल जाएंगे और धैर्य बन जाएंगे, धैर्य बना लेंगे। इस प्रकार उद्धव के मन में कुछ भावनाएं तो रही। इसलिए ज्ञान की गठरी लेकर के ब्रज में जा रहे हैं। जबकि कृष्ण बलराम जिस रथ में बैठ करके आए थे वो कंस का रथ था, सोने का बनाया हुआ, बड़ा ही कीमती वाला। तो उसी रथ में ही उद्धव को बैठा दिए, देखने में कृष्ण जैसे, फिर भी उनको पीताम्बर पहना दिए, गले में माला लगा दी। इस प्रकार कृष्ण ने उनको भेजा। कोई संदेशा बार बार कहते थे कि गोपियों को इन वचनों से सुनाना, ऐसे ऐसे करते हुए उनको भेजा। जब वे ब्रज में गए तो जमुना जी हंसती रही और वृंदावन की झाड़ियों में उनकी ज्ञान की गठरी खुलती जा रही है। पहले तो उन्होंने कुछ ब्रज लीला में जैसे सभी आनंदमय, सभी खुशहाली में यह सब देखते चले, परंतु ज्यों ज्यों नंद गांव की ओर आगे बढ़ने लगे त्यों त्यों उनको कृष्ण विरह की सारी स्थितियां दिखाई देने लगी। उस समय सभी विरह उन्माद में खोए हुए डूबे थे। जब नंद भवन के पास से पहुंचे, सड़क पर आए, कुछ लोग वहां आए, देखा कि ये सोने का रथ जरूर कोई मथुरा से आया होगा। निकट में आकर के देखा कि ये उद्धव जी आए हैं, उसे लेकर के नंद बाबा के पास में गए, उनसे मिलाया। उद्धव जी ने प्रणाम की, नंद बाबा ने गले लगाया, आंखों के आंसू बहते रहे। इसके पश्चात किसी ब्रजवासी से कहा, हम लोग बिना खाए पिए कृष्ण के लिए जैसे भी हो हम रह रहे हैं। उद्धव बहुत दूर से आया है मथुरापुर से, दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, इसलिए उसके लिए कुछ भोजन बना के लाए। तब तक ब्रज में सभी कृष्ण के विरह में अधीर, किसी के घर में कोई भोजन पानी नहीं बनता। जब से कृष्ण गए तब से नंद बाबा यशोदा मैया दिवारात्र रोते रहे। यशोदा मैया तो मुंह के ऊपर कपड़ा ढक ली, कृष्ण के बिना मैं और कुछ भी नहीं देखूंगी, दिवारात्र रोती रहे। माताएं आकर के सांत्वना देती हैं, परंतु कहां धैर्य बनता।
नंद बाबा भी एक योगी की भांति बैठे हुए दीवारात्र रोते हुए अंध जैसे बन गए। ब्रज की गौएं जितने हैं कृष्ण के विरह में अधीर होकर घास खाना और गोचारण में वन में जाना वो भी छोड़ दिया, बछड़े भी दूध भी नहीं पिया करते। इसी प्रकार कोयल अब कुहू कुहू आवाज नहीं करती, मोर मोरनी के का धन से पेखम उठाकर अब नाचते भी नहीं, भौरे फूलों में बैठकर मधुपान भी नहीं करती। इस प्रकार सभी कृष्ण के विरह में अधीर। उधर जितने भी सखा लोग हैं सुबल सुदाम मधुमंगल आदि कृष्ण के विरह में अधीर होकर कहीं किसी वन में एकांत में पड़े दीवारात्र रो रहे। ब्रज की गोपियां जब कृष्ण ब्रज से गए उस समय वे उद्धव क्यारी वाहन जहां गोपियां कृष्ण के रथ को घेर ली थी कृष्ण ने सांत्वना दी और रथ को आगे बढ़ाकर चली गई। गोपियां उनके पीछे पीछे करती हुई कुछ दूर गई जब तक रथ का निशान नहीं दिखता रहा। उसी बंद में पड़ी रही तब से राधा जी तो मूर्छित होकर के पड़ी थी। गोपियां वहां कृष्ण के विरह में अधीर होकर के तब से प्रतीक्षा कर रही, किसी ने अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया। नंद भवन जो कि नंद भवन में चूल्हे में मकड़ी का जाल हो
लागे जय श्री राधी हो मन रो लागे ना सखी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना हो मन रो लागे ना सखी मेरो श्याम बिना मन रो लागे श्याम श्याम बिना मन रो लागे ना
जाते हैं तो उतना ही सिसक सिसक कर रोने लगते हैं। कृष्ण का स्मरण करते ही उनका गला भर जाता है। उस समय नंद बाबा किसी प्रकार से अपनी को रोकते हुए उद्धव से पूछा कि उद्धव यह बता, अब तो देवकी वसुदेव कुशल से हैं, मथुरापुरी में अब तो कोई कष्ट नहीं है। दैव से वह कंस मारा गया, मथुरापुरी का सब समस्या का हल हुआ है। क्या हमारे कृष्ण बलराम कुशल से हैं? वे क्या कर रहे हैं? कब आएंगे? इतना कहते कहते वे अतिशय धैर्य को खो गए। उस समय नंद बाबा बड़े पिकल होकर के रोते रहे, उद्धव जी अब उनके इस प्रकार भाव ऐसे रोते हुए देख वे क्या कहेंगे? उनके कुछ मस्तिष्क में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं बैठा, जो कुछ भी सोचते हैं कुछ भी बोलने का। उस समय बहुत देर पश्चात उद्धव ने नंद बाबा को सांत्वना देने के लिए कुछ कहने लगे कि बाबा आप तो बड़े सौभाग्यवान, कृष्ण आपसे कहीं दूर नहीं, वे सदैव आपके हृदय में, क्योंकि वे कोई साधारण तो बालक तो नहीं है, आपका पुत्र है, तो वे परब्रह्म परमेश्वर स्वयं भगवान है, वे आपके हृदय में सर्वदा अवस्थान करते, कहीं आपसे दूर नहीं, ऐसा जानकर आप अपने को धन्य बनाए। उस समय नंद बाबा बोले कि उद्धव ये क्या तुम बोलते हो, मैंने तो सोचा कि कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं अपना पुत्र समझा, कभी तो उसको मैंने परमेश्वर या भगवान परब्रह्म ये तो नहीं समझा, और तुम कहते हो वह परमेश्वर है, आज उनके मैं खो बैठा, तो मेरे जैसे दुर्भाग्य और कौन होगा, आज भी मुझसे बहुत दूर चले, आज कैसे मैं जीऊं, कैसे उनको भूलूं, ये संभव नहीं। इस प्रकार नंद बाबा बहुत से प्रसंग सुनाया, पिता है तो एकमात्र दशरथ महाराज के पिता है, जिन्होंने एक बार हा राम कहा तो उनका प्राण पखेर हो गया, परंतु आज तक मेरा प्राण पाखी तो उड़ा नहीं, कृष्ण कहते हुए अभी भी मैं जीना, परंतु यह प्रेम की रीति है कि प्राण छोड़ना तो अति सहज है, एक बार प्राण धारण करना बड़ा कठिन। जो नंद बाबा का अगाध वात्सल्य प्रेम इस प्रकार बिना में व्याकुंठ होकर नंद बाबा कहने लगे, जब कृष्ण कन्हैया को भूख लगता है, एक मिनट का भी देर फैन नहीं होता तो घर के बर्तन सारे तोड़ डालता, यशोदा के गोदी में जब तक मैं दूध नहीं पिया तब तक उसको शांत, मेरे गोदी में बैठकर मेरे चबाए हुए पान को निकाल करके जब तक नहीं खा लेता तब तक उसको चैन का, परंतु आज अपने उस बात उस पुत्र को उस बालक को हम नहीं खो बैठा, आज घर की हर एक चीज एक वस्तु हर एक वस्तु कृष्ण की याद कराती, मैं कैसे भूलू, वो एक मिनट के लिए भी उसको भूल नहीं पा रहा, बच्चे ऐसा कोई स्थान नहीं जिस स्थान में कृष्ण ने खेला नहीं, हर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, जमुना पुलीन गिरिराज और जितने भी पहाड़ पर्वत वन वन भूमि है, सर्वत्र भी भ्रमण की, सर्वत्र उनकी लीलाओं की स्मृति बनी थी। इस प्रकार नंद बाबा कृष्ण की बचपन से लेकर सभी लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि कितने कितने भारी भारी विपत्तियां आई, उसमें उन विपत्तियों में नारायण ने हमारी बालक की रक्षा की, कृष्ण की रक्षा की, और उन विपत्तियों से हम बचे। परंतु गर्गाचार्य ने कहा था नारायण समगुणे, गुणों में नारायण की शक्ति, और इससे ही समस्त विपत्तियों से मुक्त होंगे। ब्रज में जितनी जितनी विपत्ति आई ये सब सारे विपत्तियों से हम बचे और हम सबकी रक्षा की। परंतु आज उनके इस विरह रूपी विपत्ति से हम कैसे निकले? इस विरह समुद्र से निकलने का कोई बात नहीं। इस प्रकार रात भर कृष्ण की बातें करते उद्धव को सुनाने लगे। सारी रात बीती। उद्धव जी प्रातः काल नंद बाबा जलसुदा मां को प्रणाम करते हुए अंततः कुछ भी तो बोल नहीं सके, केवल सुनते ही रहे। प्रणाम करके बाहर निकले, कृष्ण कुंड में जाके स्नान किया, गायत्री जप करते हुए अब रात ले करके रात में बैठ कर चले। कृष्ण ने कहा था गोपियों के पास जाने के, इसलिए उस क्यारी वन में पहुंचे जहां गोपियां। जैसे ही रात लेकर के पहुंचे कुछ गोपियां वहां सामने आई, बोले कि अरे ये कौन आया? इनसे वही सोने का रात लगता है, वही काल क्रूर अक्रूर जो ब्रज भूमि को अंधेरे में डालकर चला गया, तो वही आया है। अब किस लिए आया? निश्चित रूप में जान करता है गोपियों के हित पिंड को लेने के लिए आया। कंस के मरने के पश्चात मथुरापुरी में पिंड देने के लिए कुछ नहीं मिला, तो इसलिए यहाँ आया है गोपियों का हित पिंड लेने। ऐसे ताना बाना पीने लगे। उद्धव जी चमत्कृत हो गए। ऐसी प्रेम की परिपाटी, ऐसा शब्द, ऐसी भाषा कभी तो सुना ही नहीं। अब गोपियां सामने आई, निश्चित रूप में यह कृष्ण का कोई संदेश वाहक। तब उसे कहने लगी यहां तुम कैसे आए? ये रास्ता नहीं है, रास्ता भूल करके आ गया। तुम्हें कृष्ण के पिता माता के पास में जाना चाहिए, उनको सांत्वना दो, तुम्हें देख करके वे प्रसन्न होंगे। यहां तो उनका कोई भी संबंध संपर्क नहीं रहा, उन्हें धन्यवाद है जिन्होंने क्षण भर में ही सारा संपर्क संबंध तोड़ लिया है। कि मुनि रपि सुदुष्टज, ऋषि मुनियों के लिए भी जो दुष्टज है जो भूल नहीं सकते। परंतु उस कृष्ण को धन्यवाद जो कि हम सबको भूल गए, हमें छोड़ दिया है। संसार में प्रेम होता है परंतु कोई मतलब लेकर, स्वार्थ लेकर के प्रेम होता है। इसलिए कोई स्वार्थी जैसे कि जिसके पास धन हो उसे देखते हुए सभी लोग उसके मित्र बन जाते, जब तक रूप यौवन हो तब तक पति पत्नी का बड़ा संबंध है। जब कोई बीमार पड़ जाए, शरीर से विकृत हो जाए, और कोई संबंध नहीं। बार बनिता भी जब तक पुरुष से पैसा मिलता है तब तक उसकी सेवा करती है, फूलों में भावरे बैठते, एक बार मधुपान करने के पश्चात दोबारा कभी लौट के नहीं आता। जंगल में हिरण रहता है पर आग लगने पर फिर कभी लौट के नहीं आएगा। वृक्ष में पक्षी बैठते हैं जब तक फल फूल है नहीं तो पूर नहीं आएगा। तो ऐसे ही स्थिति है संसार में स्वार्थ का प्रेम। परंतु हम लोगों ने बचपन से कृष्ण से संबंध जोड़े थे, कृष्ण से प्रति व्यवहार थे, उसमें तो कोई लेन देन नहीं। कभी हमने कोई कपड़ा या रोटी हमने तो कुछ मांगा नहीं, कृष्ण से हमने कभी कुछ मांगा नहीं न कुछ दिया। जो कुछ बना सदा सर्वस्व देख करके उनकी सेवा की। परंतु आज हमारा कौन सा ऐसा दोस्त जो कृष्ण ने हमें छोड़ दिया, ये उद्धव तुम कह सकते हो हमारी क्या कमी देखी उन्होंने जो उन्होंने हमें छोड़ दिया। ऐसा कहती हुई गोपियां उस समय बड़े जोर जोर रोने लगते, विकल होकर रोती हुई कृष्ण के कोई शोर और बाल की लीलाओं का गान करने लगी और रोती रही। इस प्रकार कुछ देर तक रोती हुई कहती हुई अपने को धैर्य बनाती हुई बोली कि चलो एक बार राधा जी की दशा तो दिखा दो, एक बार देखते लो जैसे तुम आए हो। दुख किया राधा जी के पास में जहाँ फूलों के चेज में सुला दिया और लेटी हुई है फूलों के समान, उनका शरीर क्षीण बन करके बराबर हो गया। गोपियां रोई लगा करती श्वास देखती है कि श्वास चल रहा है या नहीं। कभी घंटे आधा घंटे में कोई एक शब्द बोल रहे, इस प्रकार रुई चले उड़ने लगे, कुछ चले तो पता चले कि हाँ श्वास चल रहा है। कभी कभी पल्स भी नहीं मिल पाता है। तो ये स्थिति दिव्य उन्माद की स्थिति में पड़ी हुई कृष्ण के विरह में उन्माद जो कि रूढ़ अभिरूढ़ और उससे ऊपर दिव्य उन्माद जो अंतरदशा में खोई हुई थी। ऐसी दशा में कोई एक काला भ्रमर आ करके राधा जी के चरणों में बैठने को जाता है और उसके गुन गुन ध्वनि को सुनकर राधा जी अंतर मन में सोचती है कि कोई काला भ्रमर आया और उसी के साथ बात करने लगी। तब उस दिव्य उन्माद में जो प्रलंबमय वचन कहती है जो दूसरों के और भाषा से अति ऊपर है जो बोधगम्य नहीं हो सकता, फिर भी भागवत जी ने श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया जब राधा जी के गिरह विलास को मधुपति तब बंधु माँ प्रसांग सपतला कुछ दिन माला कुंकुम सत्वीर न महतु मधुपति मानिनी नाम प्रसाद जब सदस्य विड़म्बम यस्त दूत समित्री। अरे मधु भ्रमर तू क्यों आया, लगता है कृष्ण का संदेश वाहक दूत बन करके आया। जैसे राजा वैसे राजदूत, तो यहाँ ऐसे मनाने के लिए मुझे मनाने के लिए आया क्या? एक माननी को ऐसे ही मनाया जाता है? तुम्हें तनिक भी सुध बुद्ध नहीं है, कोई ज्ञान विद्या बुद्धि नहीं है, क्यों? तुम्हारा छह पैर मनुष्यों का दो पैर होता है तो बुद्धिमान है, पशुओं का चार पैर होता है इसलिए उसे जानवर कहा जाता है, पशु कहा जाता है। अब तुम्हारे छह पैर हैं जो तुम उस जानवरों से पशुओं से गया बिता, बुद्धि तो है नहीं, कैसे आना चाहिए? तो आया तो इस गोफों में भूत में ये
तू कब लगा के क्यों आया?
कि लाल वर्ण क्या
लाल रंग लगा करके क्यों आया? कुमकुम लगा के
ऐसे ही बनाया जाता है,
तबियत फंस गया था
तो तुम्हारे प्रभु की जैसी यदि सेवा में हंसी होती है वैसे आज तुम्हारी स्थिति, तुम्हें देख करके पता लगता है तुम्हारे प्रभु भी कैसे।
तो यहाँ बार बार तुम क्यों हमें मना रहे, क्यों उनकी बातें कहते हो?
उनकी बातें हमने बहुत सुन ली,
ये सारी पुरानी हो गई है। धन्यताम अन्न वार्ता और कोई नई बात हो तो कुछ बताओ,
वो भी नहीं वही पुरानी बात है।
ये तो हमने सुन सुन करके कान भर लिया।
हम ब्रज नारी ब्रज भोटी थी,
हम वो भोरी भारी लक्ष्मी नहीं जो सिर्फ शादी भरी भारी है, बार बार थकती है रोती है फिर भी कृष्ण के पास में जा सकती
है। तो हम तो थक चुकी है,
अब हम जाएंगे नहीं और ना ही मानेंगे।
तो
वहाँ पर जाओ मथुरा में, वहाँ जाकर के मथुरा की जो नगरिया है उनके पास में कृष्ण की बात सुनाया करना, वे तुम्हें बहुत विचार दिया करेंगे।
तुम्हारे प्रभु जी की
ये करतूत है जिन्होंने आज हमें ऐसे बनाया, कहा राज दुलारी थी घर में राजमहल में रहा करते, आज तुम्हारे प्रभु ने हमें घर से निकाल के वन के भिखारिणी बना दी।
आज अपने पास मुट्ठी भर चना भी नहीं और कुछ देने लायक कोई भी चीज नहीं जो हम तुम्हें दे,
इसलिए तुम वहां जाओ यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा।
इस प्रकार विकल हो करके राधा जी अपने अंतर्भाव में हुई हुई कहने लगी, बार बार ऐसी कैसी जा रही
है। मृगयूरिव कपिंद्रम विद्वते लुप्त धर्मा स्त्रियाम अकृत विरूपाम प्रजीत काम जाना।
हे मधु
उसकी बात और क्या सुनाओगे,
मत सुनाओ।
एक जन्म की नहीं ये जन्म जन्म की बात है,
हमारे श्याम सुंदर का तो कोई दोष नहीं,
दोष है तो उस काले का दोष है, श्याम वर्ण का दोष है कि जन्म जन्म के ठग बन करके आए। जब राम अवतार में आए नव दुर्वा दल श्याम बनकर, उस समय वन में गए सुग्रीव से मित्रता कर और उसके कहने से पेड़ के आड़ में से छिप कर बानर राज बाली को मार दिया।
क्या कोई बानर को मारता है? बंदर को कोई नहीं मारता,
फिर भी आड़े छिप कर उसे मारता,
ये क्षत्रिय स्वभाव के कारण किया।
जब वन में गए तो अकेले जाना चाहिए,
एक पत्नी को हाथ हाथ पकड़ करके ले जाने की क्या आवश्यकता,
सिर पर रखा सुंदरी भेष बना करके उनके सामने आई, उसे यदि ग्रहण नहीं करना था तो नहीं करते मना कर दे,
परंतु बार बार उसे छपते हुए लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया,
तो जिससे कि और कोई ग्रहण नहीं कर सके।
क्या ऐसे करना चाहिए?
परंतु श्री राम ने तो उसे अपना लिया,
शूर्पनखा अंतर हृदय से अपना और बाहर से नाक कान काट करके राक्षसी को विरूप कर दिया। इधर राधा जी कहती है
कि इस प्रकार राम अवतार में किया, उसके बाद दूसरे अवतार में भी देखा जाए जबकि सरल सीधे साधे ब्राह्मण हो करके आए बामन अवतार में,
बलि महाराज के दरबार में गए,
उन बहुत जत्नों के द्वारा छल लिया मोहित कर दिया। बोले हम निर्लोभी ब्राह्मण है, हमें अधिक कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके राज्य में हम बैठ कर तपस्या कर सके इसलिए केवल तीन पद भूमि चाहिए,
इतना ही मांग लिया।
और मांग करके संकल्प करा करके ऐसे विराट रूप प्रकट कर लिया जिसके की सारा ब्रह्मांड नाप लिया, उसके सिर पर पैर धर करके सारा राज्य छीन लिया और उसे नागपात से बांध करा। क्या ऐसे करना चाहिए? ऐसे ही सारा छल लिया ठग लिया। बोली महाराज के पति ब्राह्मण देव ने तो अंगीकार किया और उनके भक्ति में बन गए। उनसे बच तो राधा जी कहती है ऐसे ब्राह्मण अवतार में भी ठग लिया क्योंकि श्याम वर्ण के, और इस अवतार में इस समय जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण है श्याम वर्ण में आए हैं, हमारे कृष्ण का तो कोई दोष नहीं है पर ये श्याम रंग का दोष है जो हमें सकते है। इसलिए क्या कहूँ? उद्धव कहती है कहता है कि हे स्वामिनी जी, जब बार बार ऐसे ठगते हैं उनका नाम लेने से क्या कहा, छोड़ दीजिए बोलिए मत। पर राधा जी कहती है दुष्कथा, उनकी कथाएं छोड़ नहीं पाती हूँ, कृष्ण ने छोड़ दिया पर उनकी कथाएं छोड़ी नहीं, इसलिए वही नाम घूम घूम कर उनकी कथाएं बार बार हृदय में आ जाती है, इसी कारण जी रही हूँ, नहीं तो कभी प्राण छोड़ करके हम चली जाते। जदन चरित लीला कर्ण पीस बिंदु शक्ति गदन विधौत दंग धर्म विनष्ट। यदि कोई व्यक्ति एक बार कृष्ण नाम सुन ले और हृदय में प्रवेश कर जाए, उसका घर संसार पुत्र परिवार बंधु बांधव आत्मीय सजन सबके प्रति सौहार्द मित्रता ये सभी समाप्त हो जाता है। वो बेचारा रोने लगता है, दीवारात पागल हो करके रोता है और उस रोते हुए व्यक्ति को सभी बंधु जान देखते हैं कि अरे ये बेचारा रो रहा है तो इसके साथ में क्या होगा, इससे कोई काम नहीं होने का, काम नहीं होने का, इसलिए सजना तो दुखी तब ये दुखी व्यक्ति है, इसके साथ में क्या मित्रता करनी, सब छोड़ देते हैं। और वो भी बेचारा रोता हुआ उस वृंदावन को जाता है जहाँ हम रो रही है। ऐसे ही कृष्ण का नाम शोक रुलाता है जैसे हम हो रहे हैं। इस प्रकार राधा जी बार बार अपने विषय को वर्णन करने लगी। उस समय जैसे भौरा कुछ उड़ करके कुछ दूर जाता है फिर आता है, तो राधा जी कहती है भ्रमा तुम हमें बार बार मनाने का प्रयास करते हो, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं मथुरा में जाऊं? ये तो संभव नहीं, मथुरा में जाना कदापि संभव नहीं। श्री वधु साकम आते वहां लक्ष्मी है जिसकी कृष्ण के हृदय में स्वर्ण रेखा बन करके हैं, जब कोई नहीं रहती है उस समय वो वधु बन करके बाएं तरफ जाकर के बैठी रहती है, तो मैं जाकर के क्या करूं? मथुरा और ब्रजभूमि वृंदावन की सीमाना में केवल एक लाइन ही तो है बीच में सीमा को प्रदर्शित करती है।
यदि कोई आएगा कुछ कहेगा तो हम भी साथ
जिन त्रास रस में त्रास मिला से श्री कृष्ण ने इनके साथ रास रचाया और उस रास मंडली में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं और जितनी देवियां हैं देवी प्रवेश नहीं कर पाई, ऐसी सुगंधी वाली ऐसी स्त्रियों तक प्रवेश नहीं कर सकी। वहां पर एकमात्र ब्रजवतियों को स्थान मिला जिनके माधुर्यमय भाव प्रेम को आस्वादन करने के लिए कृष्ण ने रास रचाया और उस रास में भी कहीं गोपियां मान करके रूठ करके न चली जाए, इसलिए उन्हें मनाने के लिए उनके गले में हाथ डाल करके उनसे प्रार्थना करते हैं। जो पर ब्रह्म परमेश्वर स्वयं भगवान परात्पर तत्व हैं, अनंत ऐश्वर्य माधुर्य के जो अधिपति हैं, वे गोपियों से अनुग्रह की प्रार्थना करते हैं हे गोपियों तुम लोग अनुग्रह करें ये लीला संपूर्ण रखो। ऐसे रस मिला से श्री कृष्ण यहाँ गोपियों के साथ में प्रेम रस का भाव रस का आस्वादन किया। ऐसी बहु गोपियों के चरण धुले हम प्रार्थना करते हैं। तो बंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु मविष्णत। इस प्रकार बहु गोपियों के चरण रण के वे निरंतर प्रार्थना करते रहे, वंदना करते रहे। आज भी उद्धव ब्रज में घास बन करके भगवतियों के चरण की लालसा में बैठे थे। इस प्रकार यासाम हरे कठोर गीतम सुनाते भुवन स्वयं। जिनके पवित्र हरि कथा, जिनके पवित्र गीत समस्त संसार को पावन करती है, ऐसे ब्रजगोपियों की कथाओं को हम पुनः पुनः नमन करते हैं। उनके चरणों में हम पुनः पुनः नमन करते हैं। उनकी इन भावों का भागवत में वर्णन किया कि कोई भी सौभाग्यवान व्यक्ति गुरु चरण का आश्रय कर भजन करते हुए उनकी कथाओं को सुनते हुए भाव के कर्ण को प्राप्त कर ले, इससे जन्म सार्थक होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत का यही अभिप्राय है। अभी हम लोग गुरु जी के मुखारविंद से इनके उपसंहार कथाओं को श्रवण करेंगे। इसलिए मैं आज अपना वक्तव्य यहीं पर रखता हूँ। फिर से हम लोग आप लोगों के दर्शन के प्रयासी हूँ। तो इस प्रकार सबकी उपस्थिति और गुरु चरण कमल के आश्रय का सौभाग्य प्राप्त हो, इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं अपना वक्तव्य यही रखता हूँ।
अभी अभी आप लोगों ने कृष्ण के विरह में डूबे हुए गोपियों की बात सुनी। जब उद्धव जी ब्रज में गए और गोपियों से मिले तो गोपियों ने पहले ये प्रश्न किया, उद्धव प्रेम एक स्वार्थ होता है और एक निस्वार्थ प्रेम होता है। भिक्षुक जाता है किसी के दरवाजे पर, राधे राधे कहता है, भिक्षा मिल गई, एक मिनट फिर नहीं रहेगा। कोई हिरण जंगल में रहता है, जंगल में आग लग गई तो फिर वो जल गया, फिर वहां पर कभी नहीं जाता। पक्षी वृक्ष में तब तक रहते हैं जब तक कि फल और फूल रहे। एक वेश्या मनुष्य को तब तक खूब आदर करेगी जब तक कि पैसा मिलता है, पैसा खत्म हो जाएगा फिर उसे अपने दरवाजे पर नहीं आने देगी। स्वामी पुरुष स्त्रियों से काम प्राप्त हो जाने के बाद में फिर उसको छोड़ देता है, ये तो स्वार्थ का प्रेम। भौरा पुष्पक पर जाता है, मधु ले लिया, फिर लौट करके नहीं आएगा। छात्र स्कूल में जाता है, स्कूल परीक्षा पास कर ली, फिर कभी मास्टर को गुरु को गुरु नहीं कहने, प्यार नहीं, प्रेम नहीं करता, उसका आदर ही नहीं करता, स्मरण ही नहीं करता। उद्धव तुम बतला सकते हैं कि हमारा प्रेम तो ऐसा नहीं था, हमने तो निस्वार्थ भाव से कृष्ण की सेवा की और कृष्ण का प्रेम भी निस्वार्थ था, हमसे उनका कोई भी स्वार्थ नहीं था, तो बतलाओ था ये प्रेम कैसे टूट गया। उद्धव जी सिर खजुलाने लगे, कोई उत्तर नहीं दे सके, इसलिए गोपियों की पाठशाला में विद्यालय में वो भर्ती नहीं हो सके। स्कूल को देखा, प्रोफेसर टीचरों को देखा, राधा जी प्रिंसिपल को देखा, ललिता विशाखा का जिसका इन्होंने वर्णन किया, उनकी विरहवस्था को देखा और अपने को कृतार्थ मानने लगे, और गोपियों का ऐसा विरह, उन्होंने हमारे ऊपर में महान अनुग्रह किया। मैं तो समझता नहीं था, मैंने समझा जी कृष्ण को छोड़कर के मथुरा से यहाँ से कैसे आऊं, किंतु हम तो कहते हैं कि कृष्ण पूरी तरह से मथुरा वृंदावन में ही है, ब्रज में गोपियों के पास में है, मथुरा में तो वो एक अंश मात्र से कि गोपियों की तरह तरह से स्तुति वंदना किया जिसका इन्होंने वर्णन किया। इसके बाद में कृष्ण और बलदेव द्वारका में गए, बलदेव जी का रेवती से विवाह हुआ, और रेवती और कौन बारुणी से विवाह हुआ। कृष्ण ने फिर तरह तरह के स्वयंवरों में रुक्मणी जी से, सत्यभामा से, मित्र बिंदा से, कालिंदी से और सब आठ पाठ रानियों से शादी की, और इसके बाद में नरकासुर की जेलों में बंद 16,000 राजाओं की कन्याएं सुंदरी और उनकी पत्नियां थी बड़ी सुंदर, उनको जेल में बंद कर दिया था। ये किसी दिन विवाह करूंगा किंतु भाग्यवश नहीं किया। नारद जी के मुख से सुन करके कृष्ण गए सत्यभामा के साथ गरुड़ पर चढ़ करके नरकासुर का वध किया और जेलखाना खोल दिया। वो समस्त रानियां और राजकन्याएं कृष्ण के पास में आकर के प्रणाम किया। कृष्ण ने कहा तुम अपने घरों का पता बताओ, पति का ठिकाना बताओ, तुमको वहां पर पहुंचा देंगे। वो उन लोगों ने कहा अब हम उनके पास में लौट करके नहीं जाएंगे, अब हम एक ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग एक वर्षों तक इनके जेल खाने में हैं, वो कैसे ग्रहण करें। अब तो हम आपकी दासियों की दासी बन करके सेवा करना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा अच्छी बात, सबको गरुड़ पर बैठा करके ले गए द्वारकापुरी में और सबसे अलग अलग महलों में अलग अलग तरह से कृष्ण ने 16,000 रूप धारण करके सबसे राजकीय विवाह किया। दासी नहीं बनाया, कृष्ण ऐसे दयालु है। रामचंद्र से कोई प्रार्थना करे मैं आपकी अर्धांगिनी पत्नी होनी चाहता, कैसे इस लीला में नहीं वो आना कृष्ण लीला में। दंडकारण्य के 60,000 ऋषियों ने कृष्ण राम से ऐसे ही प्रार्थना की, ओ तुम वहां। जनकपुर की राजकन्याओं ने राम को देख करके सीता जी के साथ में ब्याह हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे पति भी राम थे, उन्होंने कहा इस लीला में नहीं कृष्ण लीला में। कृष्ण ऐसे परम उदार है, कुब्जा सबको भी ग्रहण कर लिया और की तो बात क्या। इस तरह से कृष्ण ने इनको ग्रहण कर लिया और इसके बाद में महाभारत के युद्ध में दोनों पक्ष के समस्त जितने द्वीप के सब लोगों को समाप्त किया, केवल थोड़े से ही पांडवों की तरफ में 5 और एक बच गए कृष्ण 6, और उधर में भी कृपाचार्य अश्वत्थामा कृतवर्मा और कुछ बचे, बाकी सबको ध्वंस किया। फिर आए द्वारका का भी सब अपने परिवार को भी प्रायः समाप्त कर दिया और धाम में जाने के लिए बैठे थे। उस समय में उद्धव जी उनको खोजते हुए उनके पास में आए, बोले जी प्रभु अब मैं समझ रहा हूँ कि आप अपने धाम में चले जाइए, कृपा करके हमको मत छोड़िए, हमको भी साथ ले जाइए। उन्होंने उद्धव तुमको रहना पड़ेगा, तुम रहो हमारी लीला कथाओं को जगत में प्रचार करना, नहीं तो जगत पूरी हो जाएगी। उद्धव को समझाया, उद्धव जी ने कुछ प्रश्न किए और इन्होंने उत्तर दिए। उस समय में एक समय नारद जी आए द्वारका में, वसुदेव जी ने पूछा हमने तो कृष्ण को पुत्र समझा और मैंने अपनी मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया, आप कृपा करके हमको बतलाइए कि मुक्ति कैसे मिलेगी संसार से। मन ही मन में नारद जरा हंसने लगे, बोले जिसका पुत्र कृष्ण है उसको मुक्ति की जरूरत। फिर भी कहने लगे कि 9 जोगेंद्र थे, कभी राजा जनक के पास में निमि के पास में गए, राजा नेमी ने पूछा माया क्या है, किसको कहते हैं? आप लोग सुनिए, अच्छी तरह से सुनिए, माया क्या है? कृष्ण ने वो नौजवानों में से एक ने कहा, जिसे भगवान की शक्ति दो है, एक पराशक्ति है एक अपराशक्ति है। पराशक्ति भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं, भगवान की भगवत्ता खुलाकर और परिकरों की भी को मोहित कर करके कृष्ण की लीलाएं कराती है, आस्वादन कराती है, वो तो पराशक्ति है। और उन्हीं की छाया माया शक्ति है जो जगत की सृष्टि करती है। और सबसे अधिक बात, हम लोग शरीर नहीं है, ये तो हार्ड मंस रक्त पेशाब पैखाना की थैली है, तभी इस शरीर में मैं और शरीर से संबंधित व्यक्ति ये मेरा है, मेरी है, मैं और मेरापन का यह आरोप करा देती है। ये मेरी स्त्री है, ये मेरे लड़के हैं, ये हमारे पति हैं, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा बाग बगीचा है, ये मेरा कुत्ता है, ये मेरी गाय है, वो वही माया है, यही माया है। और भगवान को भूल करके भगवान का सेवक होते हुए भी जीव अनंत काल से भ्रमण कर रहा है इस संसार में और सुख दुखों को भोगता है, यही माया है। इस माया से पार पाना बड़ा भारी कठिन है। फिर राजा ने पूछा, इस माया से कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा, जब जिस प्रकार से वो भगवान को भूल करके आया है, फिर उसी भगवान का स्मरण करने से ही हम माया से पार कर सकते हैं। इसके लिए प्रथम सदगुरु के पास में जाओ, उनके चरणाश्रित हो, अपना जितना लाभ है सब कुछ उनको अर्पण करो, उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करो, तब उनकी उनको भगवान का प्रकाश ज्ञान करके और उनकी सेवा करने से तुमको रास्ता बतलाएंगे और तब तुम उन्हीं के बतलाए हुए रास्ते से साधनों से भगवान की सेवा कर सकते। बिना गुरु के तुम भव सागर से नहीं पार कर सकते कृष्ण की पीपी पर, किंतु गुरु भी ऐसा तैसा नहीं हो, सर्वशास्त्र विशारद हो, जानने वाला, शिष्य की सारी शंकाओं को मिटा देने वाला हो और संसार से परम विरक्त हो, कृष्ण की अनुभूति हो, ऐसा गुरु ही हमारा कल्याण। जैसा तैसा जो गुरु संसार में डूबा है, जो और सब कामनाओं में डूबा है, वो क्या संसार का कल्याण है? इसके बाद कृष्ण ने उनको कहा, देखो एक बात कहते हैं, पुरंजय नाम का एक महाराजा था, सारा विश्व ब्रह्मांड में उसका राज्य था, बड़ा प्रतापी राजा। उसकी स्त्री भी बड़ी सुंदरी, परम गुणवती रूपवती, बच्चे भी हैं। एक दिन जंगल में गया और एक परम सुंदरी अप्सरा को देखा, उर्वशी को, कुरुर्वा उसका नाम था। तो जंगल में उस उर्वशी को देखा और उसका रूप देखते ही मुग्ध हो गया। बोला, जे देवी आप कौन हैं? किस लिए यहाँ पर आई हैं? क्या ढूंढ रही हैं? तो उसने कहा, हे महाराज, मैं स्वर्गीय अप्सरा उर्वशी हूँ, मैं अपने लिए योग्य पति ढूंढ रही हूँ। आज मेरा सौभाग्य कि आप जैसे व्यक्ति हमको मिल गए, मैं आपके साथ में विवाह करके आपके साथ में रहना चाहती हूँ। राजा ने ये कहा, जैसे हमारा तो ये परम सौभाग्य होगा, बहुत मैं खुशी हूँ। तब उसने अस्त्रा ने कहा, जो हमारी दो प्रतिज्ञा है, शर्त है, हमारे पास में भेड़ के दो मेमने हैं, इसकी आपको रक्षा करनी होगी। राजा ने कहा, ठीक है, करें। दूसरी बात, कभी भी हमारे सामने नंगे होकर के नहीं आएंगे। यदि बच्चों की, भेड़ के मेमनों की रक्षा नहीं हुई और नंगे आ गए, तो हम छोड़ करके आपको चले जाएंगे। राजा ने कहा, ठीक। हजारों वर्ष तक उस अस्त्रा के साथ में रहे, और उनका हजारों वर्ष एक सेकंड की जैसा बीत गया, उनको मालूम नहीं कहां गई रात, कहां गया दिन, आसक्त होकर के उसके साथ में भोग करते हैं। हजारों वर्षों के बाद एक दिन इंद्र ने कहा, यह हमारी अप्सरा वो उर्वशी कहां गई, उसको कहीं से जैसे जैसे तैसे लाओ। तो देवताओं के अनुचर गए और भेड़ों को चुराने लगे, जो भेड़ों को ले जाने से वो आ जाएगी, भेड़ के बच्चे को चुराने लगे, तो वो मैं करने लगे। तो उस अप्सरा ने सुना, उर्वशी ने कहा, अरे कापुरुष बड़ा दीन बनता है, हमारे भेड़ के बच्चों को भी रक्षा नहीं कर सकता है, तुमको लज्जा आनी चाहिए, धिक्कार है तुम्हें। राजा ने राजा को बड़ा ये लगा और झट जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में वहां से धनुष बाण दिया चले। उस समय राजा नंगे थे और जब ही बाहर में चले और भेड़ के बच्चों को छुड़ा करके लाए तो उर्वशी ने कहा, अब हम तो तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तुमने अपने सत्यों का उल्लंघन किया है, नंगे हमारे सामने आए। और उर्वशी चले जाने लगी अपने लोग को, तब ये गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, ये देवी एक मिनट के लिए ठहर जाओ, हमारी आशाएं पूर्ण नहीं हुई, एक मिनट के लिए ठहर जाओ। उसने कहा, देखो भगवान का भजन करो, इससे तुम सुखी नहीं रह सको, बहुत समझाया माने मुझे, अपने लोग को चली गई, पीछे पीछे ये वहां पर गए। वहां जाने के बाद में करी हमें धिक्कार है, मैं पृथ्वी का राजा बड़ा पड़ा और ये अस्त्रा ने उर्वशी ने हमें छल लिया, ठग लिया, मैं फिर तस्वीर मोहित होकर के दिन रात कहा गया, हजारों वर्ष बीत गए और आज उसको पीछा करते करते उर्वशी लोक में आया हूँ, मुझे धिक्कार है, आज ही मैं अपने मन से उर्वशी को निकाल देता हूँ। निकाल दिया, फिर लौट करके चले आए और राज्यपाल छोड़ करके भगवान का भजन कर दिया। क्या तात्पर्य, भगवान ने जन्म दिया है स्त्री पुरुष का भोग करने के लिए नहीं, पुरुषवत जैसा वैराग्य के लिए, भजन करने के लिए। इसलिए हम लोग संसार में आसक्त स्त्री पुरुष के प्रेम में नहीं होंगे, देख लेना, यदि हुए आसक्त तो गए दोनों जहां से खुदा की कसम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसलिए सावधान संसार कीजिए पांडवों की भांति और आप लोग संसार कीजिए गोपियों की भांति, और पति लोग स्त्रियों को प्रणाम करके गोपियां जैसा आदर करेंगे, ये संसार है। द्रौपदी का, पांडवों का संसार, सर्वभक्ति का ऐसा संसार करो। ये सब कथाएं आप लोगों को हमने सुनाया, इन लोगों ने सुनाया, घर घर जाकर के सुनाया, कुछ तो अपने गांठ में लो, हम लोग चले जाएंगे फिर भूल नहीं जाना, अपने पॉकेट में अच्छी तरह से अपने हृदय रूपी पॉकेट में रख लो। हम लोगों के जाने के बाद में भी किसी प्रकार से दुर्बल न हो करके जैसा बतलाया है हरिनाम करना, प्रतिदिन जिनकी दीक्षा हो गई है वो लोग नियमित रूप में संतान नहीं करेंगे, गुरु का दिया हुआ मंत्र जपेंगे। जिन लोगों ने हरिनाम नहीं लिया है अब अगले साल उनको प्रस्तुत होकर के हरिनाम कीजिए, नहीं तो फिर गधे घोड़े सूकर के रूप में आना पड़ेगा, मछली खो करके आया बंगाल में जन्म लिया तो ऐसे ही खा जाएंगे पश्चिम देश में भी, ऐसे छुल छाल करके तेल में दे करके खा जाएंगे। याद रखो, मांस माने ही होता है मांग कर, मुझे जो खाएगा वो उसको खाएगा, मीट मैंने भी वही होता है, मी ईट, एम ई ए टी, मी जिसको तुमने खाया वो हमको भी खाएगा, खबरदार ये सबसे दूर रहो। यदि कल्याण चाहते हो तो गांजा भांग अफीम सिगरेट धूम्रपान मत करो, और सबसे अधिक गेम न खेलो, गेम माने जुआ मत खेलो, ये सबसे दूर रह करके भगवान का भजन करो। आज यहीं पर हम लोग अपनी कथा का विश्राम देते हैं। याद रखो हम लोगों ने जो जो सुनाया है उसको हृदय में धारा।
कृष्ण गुरुदेव महाराज की जय, हरि लाल की जय, जय श्री राधे।
बोलो 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 बोलो। अभी 5 मिनट के लिए बैठेंगे सारे। आज से हमारा आखिरी दिन था यहाँ पर, जो 5 दिवसीय हमारा हरि कीर्तन एवं हरि कथा का जो आयोजन हुआ था 5 दिन का, आज यहाँ पर शेष हो रहा है। तो आप लोगों ने अभी गुरु जी से सुना है कि जिन्होंने हरे नाम ले लिया और वो भजन करेंगे, किस तरह भजन करेंगे गुरु जी ने बता दिया उनको, और जिन्होंने हरे नाम नहीं ले लिया गुरु जी ने स्वयं अपने मुख से किया कि अगले साल उनको प्रस्तुत करो। इसका ये वजह है कि गुरु जी अगले साल आ जाएंगे और वही कथा हमें यहाँ पर प्रवेश करेंगे गुरुदेव महाराज की। क्योंकि हमने गुरु जी के सेवकों से सुना था कि अगली बार गुरु जी इसमें रशिया जाने वाले हैं, मगर अब गुरु जी ने ये कहा है कि मैं अगले साल भी आ जाऊंगा। तो आज के इस समापन दिवस पर मैं सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म के चरण में अनंत अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ, और उनकी स्थिति है हम कि जिन्होंने इस अवस्था में भी और उनके इस बिजी शेड्यूल में भी जहाँ पूरे विश्व में वो प्रचार कर रहे हैं, हमारे लिए हमारे जम्मू वासियों के लिए समय निकाला है और हमें इस सुंदर हरि कीर्तन और हरि कथा से हम सबको भावुक गौर कर दिया। तो मैं उनका चिरऋणी हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि हम ना समझ बच्चे हैं, हम नहीं जानते हमारा कल्याण कैसे होगा गुरुदेव, मगर आप जानते हैं, आपने स्वयं कहा है कि मैं इसलिए आता हूँ कि मैं वो भक्ति रूपी वो भगवान की हरि कथा लेकर वो इंजेक्शन लेकर मैं आप यहाँ पर इसलिए आपको स्मरण कराने आता हूँ और वो इंजेक्शन हरि कथा रूपी इंजेक्शन करने आता हूँ, ताकि आप लोग भूलो मत कि आप लोगों का वास्तविक गंतव्य क्या, आप लोगों का वास्तविक लक्ष्य क्या है। तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम भूलते हैं क्योंकि हम बदजीव है। हे गुरुदेव, मेरी चरणों से यही प्रार्थना है, आप भी हमेशा हमें याद रखें और वही हरि कथा हरि कीर्तन रूपी इंजेक्शन हमें बार बार दे दीजिए। तो उनके मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। उसके पश्चात मैं श्रीपाद भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज, श्रीपाद भक्ति वेदांत माधव महाराज और बैजनाथ प्रभु जी, उनका भी धन्यवाद हूँ जो गुरु जी का ख्याल रखते हैं और उनकी सेवा में रहते हैं और उनके लिए सेवा में हमेशा रहते हैं। उसके बाद कृष्णदास ब्रह्मचारी का जो सुंदर सुंदर उन्होंने भजन गाए और आप सब लोगों को बावो जोर कर दिया, और उन्होंने सवेरे से शाम तक 7 से 9, 9 से 10 से 12, 1 बजे तक, और फिर यहाँ 3 बजे से 7 बजे 6:30 तक, और फिर 7 बजे से 9 बजे तक कोई विश्राम नहीं हमने उनको दे दिया। उसके लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ जो पूरे उन्होंने जुम्मों में सब हरि कीर्तन और हरि कथा सबको ये प्रवेश कर दिया। उसके बाद मैं इस मंदिर की कमेटी से श्री राम ये मंदिर जो है उसकी कमेटी उनके मुख्य प्रधान जो है शायद अभी यहाँ पर नहीं है, सुखदेव सिंह जी, अगर उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर है तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ वो खड़े हो जाए और गुरु जी से वो भगवद गीता और उनका पोस्टर ले लें। अगर यहाँ पर है सुखदेव सिंह जी की धर्मपत्नी, अगर यहाँ पर है मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वो भी इस मैनेजिंग कमेटी में है, यहाँ पर है सुखदेव जी आ रहे हैं। तो उसके पश्चात मैं आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आप लोगों ने सुंदर श्रोता का परिचय दे दिया और सुंदर रूप से अपने हरि कथा और हरि कीर्तन सुना, आप सब लोगों का भी धन्यवाद हूँ। हरे कृष्णा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर अपने याद ले। अभी जो गुरु जी सुंदर रूप से हरि कथा का प्रवेशन कर रहे थे, मैंने जैसे कल भी बताया, यदि आप लोगों में किसी में भी लोभ आ गया हो उन भगवान की जो सुंदर सुंदर लीलाएं हुई है, जो पूरे 84 मंडल में सब जगह पर व्याप्त है उनकी लीलाएं सुनी है, तो गुरु जी 24 अक्टूबर से 24 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक ब्रजमंडल परिक्रमा हमारे मठ से शुरू हो रही है, जो वृंदावन से शुरू होगी। यदि आप लोग कहीं जाना चाहता है, 4 दिन 5 दिन 10 दिन जिसके जैसे समय हो वो हमसे संपर्क करें। हमारा आपके पास में ही श्री गोविंद जी गौड़िया मठ में है, जहाँ पर हर संडे 10 से 1 बजे तक कीर्तन होता है, और इसी तरह कीर्तन कथा होती है, और उसके बाद प्रसाद भी होता है। तो आप लोग हमसे संपर्क कीजिए, यदि कोई भी आप में से आना चाहता है हमसे संपर्क कीजिए, हम सब व्यवस्था कर देंगे, आपकी जाने की रहने की आने की सब व्यवस्था करेंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिए। बस आप इतना मन बना लीजिए, हमने जाना है भगवान की उन सुंदर लीलाओं सुसलियों का दर्शन करेंगे जो गुरु महाराज अपने अधिष्ठान में करवाएंगे। हरे कृष्णा।
और भी एक निवेदन है, भगवान की इच्छा से यहाँ पर हम लोग का एक टीचिंग सेंटर मठ खुला है। मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर इतना बड़ा पंडाल है जिसमें कि कम से कम 1,500 आदमी बैठ सके, उसी के पास ही एक नाट्य मंदिर और छोटा सा मंदिर बने। इसलिए आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आप लोग यथासाध्य उसमें सहायता कीजिए। पैसे आए हैं, खर्च होगा, जाएगा किसी न किसी रूप में, इसलिए पैसों का सदुपयोग आप लोग कीजिए उस मंदिर में, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं, जिससे जितना हो सके दे करके जल्दी से जल्दी वो मंदिर और नाच मंदिर बन जाए। और जैसा कहा है आप लोग परिक्रमा में आने की चेष्टा
बहुत दिया। आए हैं क्या? आए हैं आगे आए। अच्छा, उनकी मिसेज जो है वो क्या पर उनकी धर्म पत्नी जो है और यदि कोई भी कोई छोटी सी प्रणामी, जैसे गुरुजी ने कहा हमारा नाट्य मंदिर होने वाला, जो भी प्रणामी देना चाहता है वो गुरुजी के सामने रखे, गुरुजी के चरणों में रखे। हरे कृष्ण। हरे
जय जय राधा रमण हरि बोल।